हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आकांक्षा के दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, झलक का आत्मविश्वास से भरा चेहरा, उसका पावरफुल अंदाज और फिर उसका प्राइवेट जेट में बैठकर चले जाना। वो तस्वीरें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थीं और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी और जला भी रही थी। वो पूरी तरह से चीख चीख कर रो रही थी। एक बार फिर से आकांक्षा बेकाबू हो गई थी, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तभी वैभव अचानक आगे बढ़ा और उसने अपनी बहन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। चटाक! कमरा एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वैभव गुस्से में बोला, बस खुद को शांत रखो, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा माँ ने कहा है, हमें दिमाग से काम लेना होगा, समझी तुम? आकांक्षा कुछ पल के लिए सुन रह गई। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाई ने उस पर हाथ उठा दिया। नैना अपने बेटे को इस तरह अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए देख नहीं पा रही थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो भी चुप रह गई। मजबूरी में उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में दर्द भी था और चिंता भी। ईशान अब भी चुप थे। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। आकांक्षा की आंखों में हैरानी और अपमान साफ झलक रहा था, लेकिन शायद उस थप्पड़ ने उसे कुछ पल के लिए होश मिला दिया था। वहीं दूसरी ओर झलक इस वक्त मेंशन के अंदर मौजूद थी। डिनर की तैयारियां चल रही थीं, किचन से खाने की खुशबू आ रही थी, स्टाफ इधर उधर भागदौड़ कर रहा था। झलक के चेहरे पर हल्का सा सुकून था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो नेशनल नीलामी में जाने के बारे में सोच रही थी जिसके बारे में दादाजी ने उसे बताया था। वो जानती थी कि वो इतनी आसानी से उन लोगों को कामयाब नहीं होने देगी। उसे ऐसा कदम उठाना था जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके, इसलिए वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रही थी। ये योजना बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। उसे ये भी तय करना था कि उस वक्त उसके साथ कौन जाएगा, किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं, ये सब वो सोच रही थी। तभी दादाजी की आवाज़ आई, झलक बेटा, खाना तैयार है। झलक ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे की हल्की मुस्कान और आंखों की चमक देखकर वो समझ गई कि दादाजी भी कुछ बड़ा सोच रहे हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सबके माथे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आईं। एक स्टाफ मेंबर जल्दी से दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि बलबीर राणा खड़े थे। उनके हाथों में अलग अलग तरह की टोकरियां थीं, फल, मिठाई, फूल और गिफ्ट पैक। उन्हें देखकर सब थोड़ा हैरान रह गए, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उनके पीछे आदित्य राणा और उसका दोस्त कबीर भी अंदर आए। कबीर, आदित्य और बलबीर को एक साथ वहां देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गईं। दादाजी तुरंत आगे बढ़े और बलबीर को गले लगा लिया। हंसते हुए बोले, अरे वाह, ये तो सरप्राइज हो गया, इतनी सारी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी। बलबीर मुस्कुराते हुए बोले, अरे बच्चों का घर है, अगर फल मिठाई और फूल लेकर नहीं आता तो क्या अच्छा लगता, और वैसे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आदित्य और उसके दोस्त कबीर को भी साथ ले आया। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था। झलक को देखकर उसे मॉल वाली घटना याद आ गई जब उसने अजीब सा व्यवहार किया था और बेवजह बातें कर रहा था, लेकिन झलक ने उस वक्त भी उसे इग्नोर किया था। अब भी उसने सिर्फ एक औपचारिक मुस्कान दी। झलक ने बलबीर जी का सम्मान के साथ स्वागत किया, लेकिन उसके बाद उसने आदित्य या कबीर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आदित्य की नज़रें लगातार झलक पर टिकी हुई थीं। जैसे ही झलक ने उसकी ओर देखा, उसने बस एक ज़रूरी सी नज़र डाली और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। दादाजी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, अरे भाई, पहले खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में भी हो जाएंगी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये कहते हुए उन्होंने सबको डाइनिंग टेबल की ओर बुला लिया। दादाजी ने खास तौर पर आदित्य को झलक के पास वाली कुर्सी पर बैठाया। उनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि अगर झलक आदित्य को पसंद कर ले तो वो दोनों की शादी की बात आगे बढ़ा देंगे। उन्हें लगता था कि इससे झलक की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, भले ही आसान ना हो, लेकिन वो कोशिश जरूर करना चाहते थे। सब लोग टेबल पर बैठ गए। एक से बढ़कर एक डिश परोसी गई। चावल, दाल, सब्जियां, पनीर, मिठाई, सब कुछ सजा हुआ था, लेकिन झलक शांत थी। वो धीरे धीरे खाना ले रही थी। बलबीर ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अरे झलक बेटा, क्या कर रही हो, इतना सारा खाना सामने पड़ा है, पहले आराम से खाओ फिर बातें करेंगे। दादाजी ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, पहले खाना खत्म करो, बाकी प्लानिंग बाद में भी होती रहेगी। झलक ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में साफ था वो सिर्फ डिनर नहीं कर रही थी, अपना काम भी कर रही थी। और अब बलबीर जी की बात सुनकर बोली, सॉरी अंकल, बट मुझे यही खाना पसंद है। ये कहते हुए झलक ने बिल्कुल सहज अंदाज में बड़े आराम से खाना खाना शुरू कर दिया। वो बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्लेट पर ध्यान दे रही थी। आदित्य थोड़ा सा चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या ये लड़की कभी नॉर्मल खाना नहीं खाती, क्या ये हमेशा इसी तरह का स्पेशल डाइट फॉलो करती है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खाना खाता रहा, हालांकि उसका पूरा ध्यान बार बार झलक की तरफ ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद सबने खाना खत्म किया और ड्राइंग रूम में एक साथ बैठ गए।
माहौल ऊपर से सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। तभी बलबीर राणा ने गला साफ करते हुए कहा, दिग्विजय तुम तो जानते ही हो कि मैं यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। आदित्य को खुद नहीं पता था कि उसके दादाजी यहाँ किस मकसद से आए हैं, वो तो बस उनके साथ इसलिए चला आया था कि झलक से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तुम्हारा ही घर है, बताओ क्या चाहिए, जो कहोगे मैं करूंगा। बलबीर धीरे धीरे उठे, वो सीधा झलक के पास गए, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोले, हमें तुम्हारी ये बेटी चाहिए, अपने बेटे आदित्य के लिए। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे मानो कमरे में बम फट गया हो। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आदित्य जो उस वक्त पानी पी रहा था जोर से खांसने लगा। उसे तो सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसके दादाजी इतनी सीधी और अचानक बात कर देंगे। उसने तो बस मुस्कुराते हुए झलक का नाम लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि दादाजी इस बात को इतना सीरियस ले लेंगे। दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आदित्य ने घबरा कर कहा। उधर कबीर की हल्की सी हंसी निकल गई, उसे आदित्य का चेहरा देखकर ही मजा आ रहा था। झलक पूरी तरह से जड़ हो चुकी थी, जैसे उसकी सुनने की शक्ति कुछ पल के लिए बंद हो गई हो। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, हमें तुम्हारी ये बेटी चाहिए, आदित्य के लिए। ये बात उसे अंदर तक हिला गई थी। दिग्विजय मन ही मन सोचने लगे, इस पागल को इतनी क्या जल्दी थी, मैंने तो कहा था पहले बच्चों को धीरे धीरे करीब आने देंगे, फिर मौका देखकर शादी की बात करेंगे, लेकिन इसने तो सीधे बम फोड़ दिया। अनामिका और बाकी लोग भी असहज हो गए थे, उन्हें दोनों के बीच की नजदीकी का अंदाजा था, लेकिन ये इतना अचानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी झलक की आंखों में गुस्से की आग उतर आई। दिग्विजय समझ गए कि अब मामला बिगड़ सकता है। वो तुरंत झलक के पास गए और उसका हाथ थाम लिया, ताकि वो कुछ गलत या अपमानजनक न कर बैठे। लेकिन झलक झटके से खड़ी हो गई, वो सीधा आदित्य के सामने पहुंची और बिना एक पल गंवाए उसके कॉलर को पकड़ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। झलक की आंखें लाल हो चुकी थी, वो उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतनी जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें कि तुमने मेरे बारे में सोचा भी, क्या सोचकर तुम्हें लगा कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी, तुम्हें ये ख्याल आया भी कैसे।
बलबीर राणा सन्न रह गए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि झलक इस तरह रिएक्ट करेगी। माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। कबीर भी अब थोड़ा गंभीर हो गया, वो तुरंत झलक के पास आया और बोला, ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सा तरीका है बात करने का, तुम्हें पता भी है आदित्य कौन है, बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, वो यहाँ सिर्फ दादाजी के कहने पर आया था, हमें नहीं पता था कि ऐसी बात होगी, प्लीज शांत हो जाओ। झलक ने तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखा, ओवर रिएक्ट कैसे ना करूं, तुम लोग क्या समझते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ अमीर लोगों के दिमाग में क्या चलता है, जब तक फायदा दिखता है तब तक रिश्ते याद आते हैं। उसकी आवाज़ और तेज हो गई, मैं कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ, इसलिए ना अब तुम्हें मुझमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर आदित्य राणा, सबको बस अपनी कंपनी आगे बढ़ानी है, अगर मैं शादी कर लूँ तो रातों रात तुम्हारी कंपनी इंडस्ट्री में नंबर वन बन जाएगी, यही सोच कर आए हो ना, वो आदित्य का कॉलर और कसकर पकड़ते हुए बोली, लेकिन सुन लो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। कमरे में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। अब मामला सिर्फ एक रिश्ते का नहीं रहा था, ये अहम, पावर और विश्वास की लड़ाई बन चुकी थी।